हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय जनवल्लभ गिरिवर धारी जय यशोदा नंदन भज जन रंजन यशोदा नंद न ब्रज जन रंजन यमुना तीर वन चारी यमुना तीर वन चारी माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय नंदन भज जन रंजन यशोदा नंदन भज जन रंजन यमुना तीर वन चारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gauranga Bolo, Nitai Gauranga. Nitai Gauranga Bolo, Nitai Gauranga. Nitai 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 Gauranga. Nitai Gauranga Bolo Gaura Hari. Gaura Hari, Bolo Gaura Hari. Mahavadanya Gaura Hari. Radha Giri Dari Jaya, Radha Giri Dari, Radha Giri Dari Jaya, Radha Giri Dari, Radha Giri Dari, Radha Rakshi Hari Jaya, Radha Rakshi Hari, Radha Rakshi Hari Jaya, Radha Rakshi Hari. Radha Gopinath, Radha Gopinath, Radha Gopinath Jaya, Radha Gopinath, Radha Gopinath, Radha Gopinath, Jagannatha Jaya, Jagannatha, Baladeva Jaya Subhadra Maya. Jagannatha Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Hari Bo, Hari Bo.
પાદ પરમંત પરિવ્રજકાચાર્ય સ્તોત સતત શ્રીમતી શિવાઇન ગ્રેસ અભય ચરણારવિંદ ભક્તિ વેદાંત સ્વામી શ્રીલ પ્રભુપાદ મહારાજ કી શ્રી અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી નામાચાર્ય શ્રીલ હરિદાસ ઠાકુર કી પ્રેમ સે કહો જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસ આદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ કી શ્રી શ્રી રાધા ગિરિધારીજી કી શ્રી શ્રી જગન્નાથ બલદેવ સુભદ્રા મૈયા કી નિતાય ગૌર પ્રેમાનંદે. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद का पहला जो स्कंद अध्याय है, मैं श्लोक की क्रम संख्या है 65 और 66 श्लोक है, लेकिन बोर्ड पे शायद 66 श्लोक लिखा है। ऋषिर् विनिर्गमे कंसो, हम लोग 65 बोल के फिर 66 बोलेंगे क्योंकि दोनों श्लोक लेने का है। 65 केवल मैं लेता हूँ। ऋषिर् विनिर्गमे कंसो यदुन्मत्त्वा सुरान् इति देवक्या गर्भसंभूतम् विष्णुं च स्ववदं प्रति। अब 66 नंबर का श्लोक। देवकी वसुदेवं च निर्ग्रह निगदैर्गृहे जातम् जातम् अहं पुत्रं तयोर् अजन संकया। देवकीं वसुदेवं च देवकीं वसुदेवं च निग्रहे निगदैर्गृहे निग्रह निगदैर्गृहे जातम जातम अहं पुत्र जातम जातम अहं पुत्र तयोर अजन संकया तयोर अजन संकया। देवकीं वसुदेवं च निग्रह निगदैर्गृहे जातम जातम अहं पुत्र तयोर अजनय संकया तयोर अजन संकया। देवकी वसुदेवं च निग्रह निर्दयिते जातं जातं अहं पुत्रं तयोर् अजन संकया। देवकी वसुदेवं च निर्ग्रह निर्गृहे गृहे जातम जातम महन पुत्रम तयोजन संकया। देवकी वसुदेवं च निर्ग्रह निगडै गृहे जातम जातम अहं पुत्र तयोर जन संकया। देवकी वसुदेवं च निर्ग्रह निगडै गृहे जातम जातम अहं पुत्र तयोर जन संकया। माताजी
देवकीं वसुदेवं च विग्रह निग्रहित जातं जातं अहं पुत्रां तयोरजन संकया देवकीं वसुदेव च निग्रह निगडै गृहे जातं जातं अहं पुत्रां तयोरजन संकया। ऋषि नारद ऋषि के विनिर्गमे चले जाने पर कंस कंस ने यदन समस्त यदुवंशियों को मत्वा सोचकर सुरान देवता के रूप में इति इस तरह देवक्या देवकी के गर्भ संभुता गर्भ से उत्पन्न संताने विष्णु विष्णु के रूप में स्वीकार करते हुए च तथा स्ववधम प्रति विष्णु से अपनी मृत्यु के भय से देवकी देवकी को वसुदेवं च तथा उसके पति वसुदेव को निर्ग्रह बंदी बनाकर निगड़ई लोहे की जंजीरों से गृहे घर पर ही जातम जातम एक के बाद एक उत्पन्न होने वाले अहन मार डाला पुत्र पुत्रों को तयो वसुदेव तथा देवकी के अजन संकया इस भय से कि वे विष्णु न हो। अनुवाद और तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज के द्वारा है। श्रील प्रभुपाद महाराज की इन दो श्लोकों का अनुवाद प्रभुपाद जिस प्रकार दे रहे हैं, नारद ऋषि के चले जाने पर कंस ने सोचा कि यदुवंश के सारे लोग देवता हैं और देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाली कोई भी संतान विष्णु हो सकती है। अतः अपनी मृत्यु के भय से कंस ने वसुदेव तथा देवकी को बंदी बना लिया और उनके उनके लोहे की जंजीरें डाल दी। कंस ने इस भविष्यवाणी से संकित होकर कि विष्णु उसका वध करेंगे, हर संतान को इस आशंका से कि वह कहीं विष्णु न हो, एक एक करके मार डाला। तात्पर्य इस श्लोक की टीका करते हुए शिला जीव गोस्वामी ने उल्लेख किया है कि नारद मुनि ने कंस को यह सूचना कैसे दी। यह घटना हरिवंश में वर्णित है। देववश नारद मुनि कंस को देखने गए तो कंस ने उनका स्वागत किया, इसीलिए नारद ने उसे बतलाया कि देवकी का कोई एक पुत्र विष्णु होगा। क्योंकि कंस का वध विष्णु द्वारा होना था, इसीलिए नारद मुनि ने सलाह दी कि देवकी के किसी भी पुत्र को जीवित न छोड़ा जाए। नारद का उद्देश्य था कि इन संतानों की हत्या करने से कंस के पाप कर्म बढ़ेंगे, जिससे शीघ्र ही उसे मारने के लिए कृष्ण अवतरित होंगे। नारद मुनि से आदेश पाकर कंस ने एक एक करके देवकी के सारे पुत्रों को मार डाला। अजन संकया शब्द सूचित करता है कि विष्णु कभी जन्म नहीं लेते, अजन अजन्मा। अतः कृष्ण के रूप में उन्होंने सामान्य मनुष्य की तरह जन्म लिया, मानुषीम तनुम आश्रितम। कंस ने देवकी तथा वसुदेव से उत्पन्न सारे शिशुओं को मारने का प्रयास किया। यद्यपि वह जानता था कि विष्णु उत्पन्न हुए तो उनका वध नहीं हो सकता,
वास्तव में ऐसा हुआ कि जब विष्णु कृष्ण के रूप में प्रकट हुए तो कंस उन्हें मार नहीं पाया, प्रत्युत भविष्यवाणी के अनुसार वह उन्हीं के द्वारा मारा गया। यह सच्चाई जान लेनी चाहिए कि कृष्ण का जन्म दिव्य रीति से होता है और वे असुरों को मारने के लिए लीला करते हैं, किंतु उसका वध नहीं किया जा सकता। जब शास्त्रों के माध्यम से कृष्ण को इस तरह समझ लिया जाता है तो मनुष्य अमर हो जाता है। भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्मच में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। हे अर्जुन, जो मेरे प्रादुर्भाव तथा कार्यों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह शरीर त्यागने के बाद इस भौतिक संसार में फिर से जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे धाम को प्राप्त होता है। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं दयाति स्वपदान्विता। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछाकल्पतृभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम इस श्री श्री राधा गिरधारी मंदिर की ओर से इस साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। आप सब जानते हैं, प्रायः सभी लोग यहाँ उपस्थित लोग जानते हैं कि मैं प्रवचन देने के लिए लायक व्यक्ति नहीं हूँ, सक्षम व्यक्ति नहीं हूँ। फिर भी कुछ भगवान की व्यवस्था है कि भगवान के भक्त लोग मुझे भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए, प्रेरित करने के लिए मुझे एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे सिलेक्ट करते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं ये ना करूँ, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से और उन लोगों के आदेश से मैं ये प्रयत्न कर रहा हूँ। तो फिर से एक बार आप लोगों से नम्र निवेदन है, कृपया आप हृदय से मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे जो ये सेवा दी गई है वो इंस्ट्रूमेंट के तौर पे शिला प्रभुपाद जी के प्रवचन और कथनों पे आधारित मैं ये सेवा कर सकूं। हरे कृष्णा। बड़ा प्रसिद्ध अध्याय है और घटना चल रही है। कंस जो कम से कम पिछले दो जन्मों से तो असुर था ही, आसुरिक प्रवृत्तियों के लिए उसने पृथ्वी को चुना था, अपना हेडक्वार्टर बनाया था। वैसे इन लोगों का अंतर केवल पृथ्वी के कुछ शहरों में नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में चलता था। ये आजकल के टेररिस्ट जैसे नहीं है कि भाई पृथ्वी के कुछ शहरों में ही अपना टेररिज्म फैला सके, ये ऐसे टेररिस्ट थे कि पूरे ब्रह्मांड में इनका टेरर चलता था। लेकिन हेडक्वार्टर था पृथ्वी। जितने भी असुर उनके साथ पहले के जन्मों में या इस जन्म में थे, वो सभी को उन्होंने बुलाया था, बोले पृथ्वी पे फटाफट सबको जन्म लेना है और यहीं से हम अपना कार्य चलाएंगे, कलयुग में पृथ्वी पे टेरर फैलाना आसान होगा। उन्हें ये नहीं पता था कि जो द्वापर युग का भले अंत समय है, कलयुग की शुरुआत होने वाली है, लेकिन उसी बीच भगवान श्री कृष्ण स्वयं आएंगे। वो सोचे कि जब भी विष्णु आए हैं, प्राय देखा गया त्रेता युग के बाद जब भी विष्णु आए तो बोले देखा गया स्वर्ग में कुछ आए, हम लोगों को मारा, ये किया वो किया, इस समय पृथ्वी पे जाएंगे, चलो देखते हैं। क्वार्टर बनाया और वो अच्छी तरह से राज करने की इच्छा से अपने पिता को भी तो राजा नहीं बनने दिया था, जेल में डाल दिया था। लेकिन उसकी चचेरी बहन देवकी का विवाह था और वो बड़ा प्रेमी था, देवकी को बहुत प्रेम करता था अपनी बहन को। तो स्वयं राजा होते हुए भी और इतना बड़ा असुरेश्वर होते हुए भी वो स्वयं रथ चलाने लगा। प्रेमवश आदमी चाहे कितना भी बड़ा हो, अपने से छोटे के लिए भी रथ चलाते हैं, ये तो परंपरा हम देखते ही रहे हैं। तो असुर स्वयं अपनी ही बहन देवकी का विवाह के समय का रथ चलाकर जा रहा है और देवताओं ने आकाशवाणी की कि इसी देवकी का आठवां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। अभी गर्भ शब्द बताया गया था, न पुत्र न पुत्री, ये नहीं पता था। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे इस देवकी को मैं इतना प्रेम कर रहा हूं, इसका रथ मैं स्वयं चला रहा हूं, ये मेरी दुश्मन कैसे बनेगी, या इसका पुत्र या पुत्री जो भी आठवां गर्भ मुझे मारेंगे। तो असुर जो होते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए ही किसी से प्रेम करते हैं और जब स्वार्थ अपना लगता है कि पूरा नहीं होगा तो उसी से तुरंत ही उनकी शत्रुता हो जाती है। तुरंत ही तलवार निकाल के कहता है कि मैं इस देवकी को यहीं पे समाप्त कर देता हूं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इसका गर्भ ही नहीं होगा। तो वसुदेव जो उसके पति थे, भक्त थे, बड़े बुद्धिशाली थे, उन्होंने कहा अरे कंस, इस समय जबकि तुम्हारी बहन का विवाह हो रहा है, तुम उसे मारोगे तो तुम्हारी कीर्ति के बदले अपयश होगा, क्योंकि ये धर्म के विरुद्ध का काम कर रहे हो। एक विवाहित स्त्री को विवाह के दिन मारना ये बहुत बड़ा अधर्म का कार्य होगा, ऊपर से तुम्हारी खुद की बहन है, तुम्हें डर है तो उससे नहीं लेकिन उसके पुत्र से है ना। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि इनके जितने भी पुत्र होंगे मैं तुम्हें सौंप दूंगा, हाँ तुम्हें समर्पित कर दूंगा, तुम्हें जो करना है वो तू कर सकता है। तो कंस ने भी सोचा कि अधर्म का कार्य करके मैं क्यों अपना अपयश अकीर्ति फैलाऊं, मैं जो नया नया राजा बना हूं मेरी कीर्ति फैल रही है, हाँ मैं जानबूझकर क्यों अपने शत्रुओं को बढ़ाऊं। और वह जानता था कि सुदेव एक ऐसे भक्त है जो अपना वचन पूरा करेंगे। तो बोला ठीक है जाओ, छोड़ दिया और अपने राज दरबार में आके सोचने लगा कि ये विष्णु जिसने मुझे पूर्व जन्म में भी मारा है ये वापस दोबारा आना चाहता है क्यों मुझे मारने के लिए। उसे पता था अपने पूर्व जन्म का इतिहास, वो जानता था, वो ब्राह्मण में था कुल में और हालांकि क्षत्रिय के रूप में था लेकिन वेदों का पंडित था, बड़ा ज्ञान था उसे और तपस्वी होने की वजह से पूर्व जन्म की कुछ घटनाएं उसे पता थी। तो वो सोच रहा है कि कैसे करके जैसे ही पुत्र प्राप्ति हो मुझे मिलना चाहिए। और वसुदेव ने यथारूप अपना पहला पुत्र जब कीर्तिमान का जन्म हुआ उसे लेकर कंस के पास आ गए, बोले ये लो मेरा पहला पुत्र। तब वो सोचा कि ये पहले पुत्र मारकर मैं क्या करूं, जबकि आठवां गर्भ मुझे मारने वाला है तो पहले को क्यों मारूं। अच्छा ठीक है वसुदेव जी, आपने अपना वचन का जो पालन किया मैं संतुष्ट हूं, आप लेके जाओ इसे। हालांकि वसुदेव जानते थे कि ये दे रहा है लेकिन फिर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, फिर भी अपने पुत्र को लेकर खुशी होकर घर पे आए, देवकी माता को दिया, देवकी माता खुश हो गई। लेकिन इस समय नारद मुनि वहां पे प्रवेश करते हैं कंस की सभा में, जो कल का श्लोक था। और आज का श्लोक नारद मुनि चले जाने के बाद क्या होता है ये उस पर श्लोक है, ये पूर्व भूमिका थी। कल शालिग्राम कृष्ण प्रभु ने पढ़ लिया था जो बता रहे थे कि नारद मुनि ने आकर कंस से कहा कि अरे कंस, तुमने ये जो पहला पुत्र वापस कर दिया, तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि आठवां ही पुत्र विष्णु होगा? ये पहला विष्णु नहीं हो सकता है क्या? पहले के समय में विष्णु के अवतारों के बारे में सोचो। जब जब विष्णु ने अवतार लिया है असुरों के वध के लिए, कोई ना कोई छल कपट ही किया है। बिना छल कपट तो वो सीधे तो आए ही नहीं है। तो वो कंस सोचने लगा कि हाँ यार, बलि महाराज के समय भी वो तो वामन बन के आया था। जब मैं हिरण्यकशिपु के रूप में था, तब भी हिरण्यकशिपु को मारने के लिए, हालांकि उसको पूरा मुझे वरदान था ब्रह्मा से कि मुझे कोई नहीं मार सकता था, तब भी हिरण्यकशिपु को मारने के लिए इसी विष्णु ने नरसिंह रूप लिया था, जो कि ऐसा न पहले कभी सुना था न कभी आगे किसी का होने वाला है। वो भी तो एक बहुत बड़ा छल ही था, नहीं तो ये कैसा रूप था? नर सिंह ऐसा तो कभी होता नहीं है, इससे बड़ा छलिया कोई है नहीं। तो नारद मुनि की बात तो सही लग रही है कि ये आठवां बोलेगा और पहला आके बोलेगा मैं ही आठवां हूं, इसके छल की कोई ये थोड़ी है क्या, सीमा थोड़ी है। तो इनकी बात तो मुझे सही लग रही है। हालांकि कुछ लोग ये कहते हैं कि नारद मुनि ने वो पुष्प उठाया, दिखाया, बोले देखिए इसमें से आठवां कौन सा है, पहला कौन सा है, गिन सकते हो। हाँ, या उसके मिनिस्टर ने ये कहा कि देखिए ये पांचवी उंगली में बताओ, पांचवी उंगली कौन सी है, इधर की ये पांचवी है कि ये पांचवी है, पता नहीं चलेगा। वैसे विष्णु कुछ भी छल करते हैं। हालांकि शास्त्रों में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि उंगली का या पुष्प का, शास्त्रों में केवल यही कहते हैं, नारद मुनि कहते हैं देखो विष्णु ने आठवां जरूर कहा है, लेकिन छल कर सकते हैं, वो भरोसा नहीं है विष्णु का, वो छलिया है, कुछ भी कर सकता है। वो पहला आके बोलेगा कि यार वो क्या हुआ, तुमको गिनती आती नहीं, कुछ भी बोलेंगे, और मैं बोलेंगे मैं ही आठवां हूं, वो बोलेंगे वो सत्ययुग से अवतार गिनती करो तो शायद मेरा आठवां आ रहा है, कुछ भी करके छल करेंगे और फिर तुम्हें मारेंगे। इसीलिए तुम ये मत सोचो कि पहला छोड़ दिया तो मैं बच गया। और दूसरी बात, मैंने ये भी सुना है कि जितने भी देवतागण हैं सभी को बताया गया है कि यदुवंश में जन्म लो। तो क्या पता ये पहला विष्णु ना हो, लेकिन देवता तो निश्चय है, और ये देवता तो तुम्हारे शत्रु ही है, तो शत्रुओं को छोड़ना तो व्याज भी नहीं होगा। तब कंस सोचा ये नारद मुनि की बात सही है, पहली बार ये संत कुछ मेरी मदद करना चाहता है। हाँ, ये संत कुछ मेरी मदद करना चाहता है, पहली बार ऐसा हो रहा है। अब समाज में ये प्रश्न उठता है कि ये नारद मुनि ये आग लगाने का कार्य क्यों करते हैं हमेशा, जहां देखो जब देखो कुछ आग ही लगाना, कुछ चुगली करना, ऐसे अभक्त लोग कहा करते हैं, समझ में नहीं आता उनको। ये प्रश्न होता है लोगों के मन में, ऐसा क्यों किए नारद मुनि? अच्छे खासे बिचारे बच्चे देवकी खुश थी, भक्त लोग खुश थे, बच्चा बच रहा था, ये तो बच्चे की हत्या करवाने का कार्य करवा दिए नारद मुनि। हालांकि नारद मुनि जैसे महान महान भक्त, हाँ, जिनके लिए भगवान शब्द भागवतम इस्तेमाल कर रहा है, ऐसे व्यक्ति के लिए इस तरह से सोचना भी एक बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। नारद मुनि त्रिकाल दृष्टि रहते हैं, उनको भूत वर्तमान और भविष्य का ज्ञान रहता है, उनको सब कुछ पता है, वो एक कार्य से अनेकों अनेक कार्य को सिद्ध करते हैं। मन की सभी इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए उनके पूर्व वर्तमान और भविष्य के सारे कार्यों को एक ही कार्य से संपन्न करने का कार्य या तो भगवान या उनके सच्चे भक्त करते हैं। तो नारद मुनि के मन में ये विचार था कि सर्वप्रथम ये कंस का मृत्यु का समय नजदीक तो आ ही गया है, लेकिन जरा स्पीड में पाप करेगा तो स्पीड में इसकी हत्या होगी, तो स्पीड में अधर्म खत्म होगा और स्पीड में धर्म का प्रचार हो सकता है, सब लोग धर्म के मार्ग में वापस आ सकते हैं। नारद मुनि और कंस ने क्या किया था, सारे धर्म के जितने भी, चाहे तपस्या हो, चाहे गाय की सेवा हो, चाहे जप कीर्तन हो, सभी मंदिरों को, तपस्या के साधन हो जितने थे ना, सबको रुका के बंद करवा दिया था। कोई गाय की सेवा नहीं कर सकता है, कुत्ते की कर सकते थे जो कलयुग में चल रहा है। कोई भी मंदिर में जब तब किरण नहीं कर सकता है, सिनेमा हॉल में जाके डांस देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सारे धर्म के कार्यों को बंद करवाया था। नारद मुनि चाहते थे कि जितना जल्दी ये मरे उतना ही जल्दी अच्छा होगा, ये प्रथम कार्य था। तो प्रश्न होता है कि इस कार्य को करवाने के लिए बेचारे बच्चों को क्यों मरवा रहे हो? और देवकी वसुदेव जैसे महान भक्तों को क्यों दुखी करवा रहे हो? वो बेचारे रो रहे थे, बच्चे अपने मर रहे तो कौन माँ बाप नहीं रोएंगे, कुछ और तरीका ढूंढते, ये कोई तरीका था क्या? लेकिन नारद मुनि त्रिकाल दृष्टि है, महान भक्त है, वो जानते थे कि ये जो बच्चे छह आने वाले हैं वो भगवान की व्यवस्था है कि ये बच्चे और कोई नहीं कंस के ही बच्चे थे, खुद के कंस ही अपने बच्चों को मार रहा है, वो भी असुरी थे पहले। मरीचि के एक्चुअली पुत्र थे एक जन्म में छह जन, ब्रह्मा की एक बोलते ना एक विशेष घटना हुई थी ब्रह्मा जी के साथ में, जो संसार में बहुत ही संशय से उसका वर्णन किया जाता है और आश्चर्य है, लोगों को मन में शंका है कि ब्रह्मा ऐसा कैसे कर सकते हैं। उस घटना को देखकर ये बच्चे लोग हंस पड़े थे, अरे ब्रह्मा जैसा व्यक्ति ऐसा करने जा रहा है? अब महान व्यक्तियों के कार्यों को समझना मुश्किल होता है। मरीचि के पुत्रों ने जब ये देखा कि ब्रह्मा इस तरह का कार्य करने जा रहे हैं तो हंसे, तो ब्रह्मा ने श्राप दे दिया, अरे असुर का कार्य कर रहे हो, जाओ असुर योनि में। तो उन्हीं छह लोगों का, मरीचि के जो पुत्र थे प्रथम मनु के समय, उनका जन्म हुआ सीधे हिरण्यकशिपु के पुत्र के रूप में, असुर बने थे वो लोग। लेकिन हिरण्यकशिपु भी उनसे असुष्ट था और उनकी मृत्यु होती है और उनका जन्म हुआ हिरण्याक्ष का बेटा जो था उसके घर में, कालनेमी के घर में। कालनेमी जो था वो हिरण्याक्ष का पुत्र था, उसके घर में ये छह पुत्र का जन्म होता है। और कालनेमी कौन है? हिरण्याक्ष का जो बेटा है वो वही कालनेमी आज कंस है। और वही छह पुत्र जो कालनेमी के घर में, जो मरीचि के पुत्र थे, हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, बाद में कालनेमी के घर में जो जन्म लिए थे, उन्हीं को वापस दोबारा श्राप मिला हिरण्यकशिपु के चाचा के द्वारा कि तुम तो ऐसे निकम्मे हो ना कि तुम्हारे पिताजी ही तुम्हारी हत्या करें, ऐसा श्राप हिरण्यकशिपु ने दिया था। तो वही कालनेमी जब कंस बन के आता है तो नारद मुनि जानते थे कि इन पुत्र की हत्या उनके ही पिता द्वारा होनी है, ये निश्चित है, ये श्राप भी है, तो क्यों ना यही छह पुत्र देवकी के गर्भ से आए, वैसे ही उनको मरना है। हाँ, और ये मारेगा तो पाप बढ़ेगा और जो उसका जो श्राप दिया था वो भी पूर्ण हो जाएगा, मीन्स अनेक कार्यों की पूर्ति होते जा रही है। श्राप पूरा होगा उसके बाद, क्योंकि वो तपस्वी था, उसकी बात मिथ्या नहीं जा सकती। एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए भक्तों को, चाहे असुर हो चाहे भक्त, तपस्या का बल जो होता है ना वो इतना शक्तिशाली होता है कि अपने मुख से निकला हुआ वाक्य अगर हमारे में तपस्या का फल है तो वो सही ही होगा, चाहे हम भक्त है चाहे असुर है। इसलिए वाक्य को बहुत सोच समझ के निकालना चाहिए, दो कारणों से। अगर तपस्या का फल है, सामने वाले का जो भी श्राप दिया तो बुरा होगा और कुछ वरदान दिया तो अच्छा होगा, लेकिन अपना तपस्या फल कम हो जाएगा, हमारा ही अंत में नुकसान होता है। तो हिरण्यकशिपु क्योंकि तपस्वी था, तपोबल था, उसका जो वाक्य था कि इसकी मृत्यु उसके ही पिता के द्वारा हो, वो वाक्य सही होता है। तो नारद मुनि की ये व्यवस्था थी कि इन छह लोगों की हत्या तो मृत्यु तो वैसे ही अभी होना है, तो क्यों ना इधर उधर कहीं हत्या हो इधर ही डाल दिया जाए इनको, इनसे हत्या हो जाए अनेक कार्य संपन्न हो जाएंगे। ऐसे शास्त्रोक्त सिद्धांतों को समझने के बाद नारद मुनि के प्रति कोई भी संशय किसी को नहीं आना चाहिए। अब ये छह पुत्रों का जन्म होता है, नारद मुनि जो है वो कह के गए थे कि ये भी देवता हो सकते हैं, इसीलिए कंस ने एक एक करके छह पुत्रों को मार दिया। कुछ वैष्णव आचार्यों का यह भी कहना है कि ये छह पुत्र काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य के प्रतीक थे, अनुयायी थे। जहां भगवान का अवतार होना है वहां ये स्थान में नहीं रह सकते, इनको निकलना ही था, इसीलिए उनको खत्म किया जा रहा है, फिर ही बलराम आएंगे और फिर टोटल प्योरिफिकेशन होगा, उसके बाद उस स्थान में स्वयं भगवान कृष्ण अवतरित होने हैं। तो ये एक ऐसी घटना जो इस भूमिका में चल रही है। आज का जो श्लोक यहीं से शुरू होता है, देवकीं वसुदेवं च निर्ग्रह निगडई गृह जाम जातम पन पुत्रम तयोर अजन संकया। अजन याने जो अजन्मा है उसका जन्म होने वाला है। संकया, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि अजन्मा का जन्म कैसे हो रहा है। जो लोग शास्त्रों को नहीं जानते, जो परंपरा से आचार्यों को नहीं सुनते, उनको इस घटनाओं से अनेक प्रश्न होते हैं। एक बार की एक सत्य घटना है। एक गांव में एक शिक्षक थे जो अपने स्कूल में छठी क्लास में यही अध्याय का वर्णन कर रहे थे कथा के रूप में, लेकिन कोई परंपरा से तो थे नहीं, किसी आचार्य से तो सुना नहीं है। तो वो सिखाते बताएं कि जब अंत को पता चला कि इनका आठवां पुत्र इनकी उसकी हत्या करेगा, तो देवकी और वसुदेव को पकड़ के कारागृह में डाल दिया। तो एक विद्यार्थी खड़ा हुआ, अरे सर एक प्रश्न हो रहा है, बोलिए। बोले जब कंस को यह पता ही था कि देवकी और वसुदेव का आठवां पुत्र इसकी हत्या करेगा, तो दोनों को एक ही कारागृह में क्यों डाला? अलग अलग कारागृह में डाल देता तो बच्चे ही नहीं होते थे, झंझट ही खत्म, उधर पूरा जीवन कारागृह में रहते थे। अब शिक्षक उसका उत्तर नहीं दे पाए, बोले ये तो मुझे भी नहीं पता है, मैं भी नहीं जानता हूं। तो संकया जो शब्द है वो क्या है? संशय, शंका देता है। शास्त्रों को जब भी बिना आचार्य की मदद अगर हम पढ़ते हैं, हजारों प्रश्न और शंकाएं मन में उठती है जिसका कोई निराकरण आम आदमी के पास अपनी बुद्धि के स्तर पे नहीं होता है। उसे समझने के लिए आचार्य की शरण में ही जाना पड़ता है। उसे समझने के लिए शिला प्रभुपाद जैसे महात्माओं के ग्रंथों के तात्पर्य को ही पढ़ा केवल जाता है और समझा जाता है। एमआई यानी मायापुर इंस्टीट्यूट में थोड़े दिन पहले जब भक्ति शास्त्री कोर्स एंड हुआ, तब इस्कॉन के बड़े बड़े वरिष्ठ भक्त लोग प्रवचन दे रहे थे। तो उसमें एक जन्माष्टमी प्रभु है वहां पे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई, फेथ, श्रद्धा, जिसकी बात कल शालिग्राम कृष्ण प्रभु भी कर रहे थे। शास्त्रों में श्रद्धा ये बहुत बड़ी जो एक असेट है, हाँ, एक हर व्यक्ति का सबसे बड़ा संपत्ति है शास्त्र में, गुरु में और साधु में विश्वास। इससे बड़ा संपत्ति संसार में कोई नहीं है। जिसके पास ये संपत्ति है वही सबसे बड़ा धनवान है, जिसके पास ये संपत्ति नहीं है वो दिन प्रतिदिन निर्धन बनते जा रहा है। चाहे उसके करोड़ों रुपए क्यों ना जमा होते हो, वो निर्धन है। तो कहते हैं कि शास्त्रों में और गुरु और साधु में विश्वास जो है वो कब आता है और कब चले जाता है। शास्त्रों में, गुरु में, साधुओं में विश्वास आता है जब व्यक्ति साधुओं की और संतों की सेवा करता है तब। और वो विश्वास उसका जैसे जैसे सेवा बढ़ती है वो विश्वास बढ़ते जाता है। और विश्वास कैसे कम होता है, खत्म होता है? जब साधुओं की संतों की निंदा करते हैं तब। साधुओं की सेवा से शास्त्र में विश्वास बढ़ता है, साधु की निंदा से, शास्त्र से, गुरु से, साधुओं से विश्वास कम होते जाता है। ये सत्य कथन है और ये हम इस्कॉन के सभी लोग अनुभव करते ही होंगे। आज नहीं तो कल हमारे जीवन में ये घटना घटित होती है। जब आए नए थे बहुत विश्वास था साधु पे, गुरु पे, शास्त्र पे, है ना, बहुत विश्वास था, पूर्ण विश्वास के साथ कर रहे थे, दिव्य आनंद आता था, हर कार्य में अच्छा लगता था। हा? गुरु पे तो इतना विश्वास के बात मत करो, गुरु जो कहें वो कुछ भी हो जाए करने के लिए लोग तैयार होते थे। हाँ, कई बार तो उनके भौतिक गृहस्थी जीवन के अनेक कार्यों में उथल पथल हो जाती और भौतिक दृष्टि से वो दुखी हो जाते, फिर भी नहीं, गुरु का किया गया बताया गया वचन है मैं पूरा करूंगा। ऐसे ऐसे भक्त होते थे जो गुरु के लिए पूरा भौतिक अपना जो जीवन है उसको नष्ट करने के लिए तैयार होते थे। लेकिन धीरे 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 जब भी कोई व्यक्ति साधुओं की निंदा करना शुरू करता है और सेवा कम करते जाता है, उसके जीवन में सर्वप्रथम अपने गुरु के प्रति ही श्रद्धा और विश्वास जो है वो कम होता है, शंकाएं बढ़ती जाती है। और फिर 15-20 साल के बाद दीक्षित भक्त लोग मन में ये शंका भी करते हैं, प्रश्न भी पूछते हैं कि हमारे गुरु में हमको विश्वास नहीं, हम क्या करें, हमारे गुरु ये कहते हैं ये करते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये है वो है। इसका कारण ये है कि हम ही लोग जो है वो निंदा में ज्यादा और सेवा में कम अपने आप को एंगेज करते हैं, तो विश्वास चला जाता है। कंस का विश्वास, कंस वैसे एक शास्त्रक पंडित है, उसका विश्वास एक्चुअली होना चाहिए कि जो विष्णु ने मुझे पहले अनेक बार अनेक जन्मों में मारा है, इसको मैं कुछ नहीं बिगाड़ सका, वो विष्णु इस जन्म में भी मुझे मार ही सकता है, अब उस विष्णु के मृत्यु के चक्कर में मैं अन्य बच्चों को मारूं और ये सब उपद्रव क्यों करूं? नहीं, लेकिन उसको ऐसा ही लगता है कि नहीं मैं कर सकता हूं। शास्त्रों में विश्वास उसका कम है, वो जानता है शास्त्रों से अच्छी तरह से कि विष्णु को नहीं मारा जा सकता। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हैं कि वो जानता था कि विष्णु को नहीं मारा जा सकता, और जब भी कोई बच्चा उसके हाथ से मरता था ना, कंस ये भी सोचता था कि ये विष्णु नहीं है, क्योंकि ये तो मैं इसको मार सका आसानी से, वो कंस खुद सोच रहा है, लेकिन फिर भी वैसे कार्यों को वो संपन्न नहीं कर पाते जानते हुए, जानिया सुनिया। जैसे हम भक्त लोग भी अविश्वास के मार्ग पे अनेक निंदाओं के कार्य करते हैं, वैसे वो भी करते जा रहा है। यही आसुरी कंस का प्रवेश हमारे हृदय में भी कुछ अल्प मात्रा में या मात्रा में होता ही है। हमारे हृदय में एक भक्त भी रहता है, एक असुर भी रहता है। जब भक्तों की सेवा करते हैं, गुणगान गाते हैं, कीर्तन भजन करते हैं, तब वो भक्त का जन्म है, भक्त का उदय हो रहा है, और जब ऐसी निंदा करते हैं तो वो कंस का उदय हो रहा है। कंस की प्रवृत्ति हमारे यहां बढ़ रही है, विश्वास उठते जा रहा है। इस टीचर को पता नहीं इसका उत्तर कैसे देने का, वो कहता है मुझे नहीं पता है। ये बात इस्कॉन के भक्तों के पास आई, इसका क्या उत्तर हो सकता है? अब सीधा सा इसी श्लोक में इसका उत्तर दिया है, अजन्मा। हाँ, भगवान तो अजन्मा है, उसको जन्म लेने की क्या जरूरत है? अब देवकी और वसुदेव को अलग अलग कारागृह में रखा जाए तो भी वो अजन्मा कभी भी कोई भी परिस्थिति में कहीं भी जन्म ले सकते हैं, उसको बायोलॉजिकल मीटिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, उसको साथ में रखो चाहे अलग। इस बात को कंस जानता था, बोलो, ये असुर जानता था कि इनको अलग रखो जेल में चाहे साथ में रखो, अजन्मा है तो वो तो जन्म ले ही सकेगा, मुझे तो केवल ये देखना है कि इस जेल में जैसे ही इसका जन्म हो उसे मारो, ये नहीं सोचना है कि अजन्मा है ये जन्म ही नहीं ले सकता, इसको अलग करूं तो। वो ये भी जानता था कंस, यही इसका उत्तर है जो इस्कॉन वालों ने दिया। तो शास्त्रों में विश्वास के लिए हमें चाहिए कि हम श्रीला प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन करें, और श्रीला प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन करते हुए उनमें जो सिद्धांत दिए हैं उसका पालन करने का कोशिश करें, जरूर अपना शास्त्रों में, गुरु में और साधुओं में विश्वास बढ़ेगा। इन जिन लोगों के मन ये शंकाएं आती है गुरु के प्रति या शास्त्रों के प्रति, उनका यही कार्य है कि श्रीला प्रभुपाद जी के ग्रंथों के अलावा किसी ग्रंथ को कभी न छुएं न कभी पढ़ें, जरूरत ही नहीं है। 100% वेल सर्टिफाइड शिला प्रभुपाद जी के जो पुस्तक है, श्रीमद् भागवतम कितने स्कंद है? कितने स्कंद है? 12 स्कंद। सब लोगों ने पढ़ लिए वर्ड टू वर्ड तात्पर्य, एक एक शब्द प्रभुपाद जी का? कितने लोग ऐसे अच्छा जिन्होंने पढ़ लिया है 12 का 12 स्कंद वर्ड टू वर्ड? शायद एक आध दो हाथी ऊपर है, राइट? वर्ड टू वर्ड तात्पर्य भी, ऐसा नहीं कि चलो श्लोक टू श्लोक पढ़ के गए, कुंभ से कुंभ नहीं, श्लोका टू श्लोका नहीं, तात्पर्य से तात्पर्य बहुत कम लोग होते हैं। 99% इस्कॉन के लोगों भी नहीं पढ़ा है, तो फिर अन्य ग्रंथ की कहां आवश्यकता रही हमें? हा? कमल दल जल जीवन तलमल, इस तलमल जीवन में समय बिल्कुल नहीं है कुछ करने के लिए, कहां आवश्यकता रही? शिला प्रभुपाद जी ने 90 से अधिक छोटी किताबें लिखी है, कितने लोगों ने पूरी किताबें सभी किताबें को पढ़ा है? बहुत कम लोगों ने। चैतन्य चरितामृत पता ही नहीं है, छुआ भी नहीं है बहुत लोगों ने। प्रभुपाद लीलामृत सत्स्वरूप महाराज ने जो डिटेल में लिखा है, अब्रिज नहीं डिटेल बड़ा वाला, कितने लोगों ने पूरा पढ़ा है? बहुत कम लोगों ने पढ़ा है। अब जब इतने सारे ग्रंथ प्रभुपाद जी ने हमें दिया है पढ़ने के लिए, और ये प्रभुपाद कौन है, आइए जरा इस्कॉन के पहले से ही देख लेते हैं। इस्कॉन में आने के बाद तो स्वाभाविक है, सब लोग जानते हैं, सब लोग उनका गुणगान गाएंगे, क्योंकि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य है और हम लोग तो सब इस्कॉन वाले तो बोलेंगे ही। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो इस्कॉन का पहले तो इस्कॉन के पहले से ही जो इस्कॉन का नहीं था कभी, उस व्यक्ति के मुख से सुनते प्रभाकर मिश्रा, एक आचार्य संस्कृत स्कॉलर थे झांसी में 1954 में प्रभाकर मिश्रा संस्कृत के पीएचडी स्कॉलर थे, वैदिक पंडित। उनकी मुलाकात अभय चरण से 1954 झांसी में हुई, जब शिला प्रभुपाद जी को विश्व में कोई जानता नहीं था, तब की यह घटना। जन्माष्टमी का दिन था और झांसी के एक छोटे से मंदिर में, प्रथम ताप एक मंदिर था राधा कृष्ण का, वहां प्रभुपाद जी रुके थे और वहीं नीचे प्रभाकर मिश्रा रहते थे। इन दोनों, क्योंकि दोनों स्कॉलर है ना संस्कृत के, प्रभुपाद जी और ये आचार्य मिश्रा दोनों स्कॉलर है संस्कृत और वेदों के, दिन भर जन्माष्टमी के दिन वार्तालाप हुआ। फिर रात को करीबन 12 बजे जन्माष्टमी का दर्शन प्रसाद करके ये आचार्य मिश्रा अपने नीचे के कमरे में जाके सोए, प्रभुपाद जी भी उनके साथ नीचे उतरे थे। आचार्य मिश्रा अपने कमरे में गए, प्रभुपाद जी अपने कमरे में गए, आचार्य मिश्रा सो गए, थके हुए थे पूरे दिन के उपवास और फिर 12 बज गए थे, गहरी नींद में सो गए। करीबन 1:15 बजे के आसपास उस मंदिर से, ऊपर वाले मंदिर से जो कि बंद रहता है और आजू बाजू कुछ है नहीं, 1954 झांसी एक ऐसा निर्जन स्थान था, कोई आने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है, मंदिर से मृदंगा बजकर हरे कृष्ण महामंत्र का मधुरमय कीर्तन की ध्वनि उन्हें सुनाई देती है तेज आवाज में। तो उनकी नींद उड़ गई और सोचे कि 1:15 बजे मंदिर से कीर्तन की ध्वनि कैसे आ रही है, आश्चर्य हुआ। दो ही जन थे उधर, प्रभुपाद जी और आचार्य मिश्रा, उठे और चलकर ऊपर गए तो क्या देखते हैं, एक अद्भुत दृश्य को देखते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी दिव्य स्वरूप में नाचते हुए, मृदंगा बजाते हुए हरिनाम कीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे हैं और उनका दिव्य स्वरूप देख के वो अचंभित रह गए। और उससे भी ज्यादा उनको अचंभित पना तब हुआ जब उन्होंने देखा कि शिला प्रभुपाद जी ने कदंब की पुष्पमाला पहनी थी जो उनके घुटने तक आ रही थी, गले से लेकर घुटने तक, इतनी लंबी कदंब के पुष्पमाला उनके गले में थी और वो कदंब का एक एक पुष्प इतना बड़ा बड़ा था। अब वो सोचने लगे कि झांसी में पहली बात तो कदंब के पुष्प बनते नहीं है, मिलते नहीं है, आज जन्माष्टमी के दिन किसी मंदिर में कदंब के पुष्प नहीं है, और बाई चांस कभी झांसी में किसी साल कदंब के पुष्प अगर मिल भी गए तो छोटे लखोटी जितने मिलते हैं, इतने बड़े तो कभी होते ही नहीं है, वो भी कभी कभार ही होते हैं, आज जन्माष्टमी में तो कहीं नहीं था। तो ये कदंब का पुष्प माला, वो भी घुटने तक आई, इतनी लंबे बड़े बड़े पुष्प वाली माला इनके गले में है और एक दिव्य कीर्तन कह रहे प्रभुपाद जी। तो वो गए, एकदम कंपित हो रहे थे और जाके उनके नजीक जाके पूछा, प्रभुपाद जी आप क्या कर रहे हैं? लेकिन प्रभुपाद जी का कोई ध्यान ही नहीं था, कुछ पता ही नहीं है, वो अपना कीर्तन ही करते जा रहे हैं, कितने ऐसा कीर्तन कर रहे हैं, उनको कुछ बाह्य दुनिया का कुछ पता नहीं है। आचार्य जी समझ गए कि अभी इस समय कुछ पूछकर मतलब नहीं है, थोड़ी देर में नीचे गए सो गए। सुबह उठने के बाद जब उनका मुलाकात हुआ शिला प्रभुपाद जी से, तब उन्होंने पूछा कि आप रात को 1:15 बजे मंदिर में ऊपर कीर्तन कर रहे थे और आपके गले में कदंब की पुष्पमाला थी, वो कहां से आई? यहां तो झांसी में तो कदंब मिलते ही नहीं है और वो भी इतने बड़े थे और इतनी सुगंध फैली हुई थी, इतनी सुगंध फैली हुई थी, आश्चर्य की बात है, कदंब से इतनी सुगंध, पूरा कमरा क्या नीचे तक इतनी सुगंध थी, मैं तो वो कीर्तन का ध्वनि और सुगंध से प्रेरित होकर ऊपर आया था देखने के लिए कि क्या हो रहा है। तो प्रभुपाद जी बहुत ही ये हो गए, संकुचित एकदम शर्म के मारे थोड़ा सर झुका के बोलते हैं कि वो क्या हुआ कि मुझे मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं ऊपर जाके कीर्तन करने लगा। तो कीर्तन कर रहा था तो स्वयं भगवान आके बोले कि आपका कीर्तन से मैं मजबूर होके तुम्हें दर्शन देने आया हूँ, आपका प्रेम जो है वो मुझे यहाँ खींच के लाया है। और फिर भगवान ने अपने गले की माला निकाल के मेरे गले में डाल दी। तो जैसे ही भगवान ने अपना कदम्ब का माला मेरे गले में डाला तो मैं उनके पैर में गया, कह रहे भगवान आप मुझे इतना क्यों ये करते। मैं उनका पैर छूने गया, लेकिन जब पैर छूने गया तो नहीं थे वो, तो वो माला रह गई लेकिन वो तो चले गए थे। मुझे पैर छूने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। बस वही कीर्तन था। फिर बड़ी नम्रता से प्रभुपाद जी ने अब क्योंकि ये तो बड़े मित्र थे ना, वरिष्ठ उम्र के थे, संस्कृत वैदिक स्कॉलर थे, बरसों से वार्तालाप, बड़ी नम्रता से अपना हृदय प्रकट कर किया। वो शास्त्र ही है, शास्त्रोक्त है, क्योंकि शास्त्र में रूप गोस्वामी कहते हैं ना नेचर ऑफ इंस्ट्रक्शन में कि दो गुह्यतम भक्त अगर मिलते हैं तो उन्हें अपने अपने हृदय को प्रकट करना चाहिए बिना कोई निष्कपटता से, मीन्स कोई मोटिवेशन से नहीं। तो वो शास्त्रोक्त है, प्रश्न नहीं होना चाहिए कि प्रभुपाद जी ऐसा कैसा कहते हैं भगवान प्रसन्न हुए मुझे फूल दिया ये दिया वगैरह, क्योंकि वो दो मित्र है। जाहिर में नहीं कहा, उसके बाद कभी जाहिर में प्रभुपाद जी ने नहीं कहा, यहां तक कि आचार्य मिश्रा ने भी कभी नहीं कहा। 1979 में सीधा कहा, 1954 के बाद 1979 में सीधा ये दूसरी बार कहा। एक पहली बार प्रभुपाद जी से सुना था और फिर स्वयं वो आचार्य मिश्रा 79 में खुद कहते हैं, लोगों को पहले कभी नहीं कहा। वो भी प्रभुपाद जी तब चले गए थे 1977 में, तब जाके प्रभुपाद जी के बारे में ये घटना उन्होंने स्वयं बताई, जो उनके मेमोरीज में आज भी लिखा गया है। तो ये विश्वास है, देखिए। हाँ, अब इन ऐसे आचार्यों पे हम विश्वास न करें और अन्य ग्रंथों की ओर मुड़ित होकर जगत कल्याण की इच्छा से निकले, मुझे नहीं लगता है कि मेरा भी कल्याण हो सकता है। जगत कल्याण बहुत दूर की बात हो जाएगी। इस समय कलयुग में अगर कोई हमें गोलक वृंदावन पहुंचाने की क्षमता रखता है तो वो केवल प्रभुपाद जी के ग्रंथ है। अन्य वैदिक ग्रंथ जो प्योर फॉर्म में है, जिसमें तात्पर्य किसी ने अपना नहीं लिखा है, उसकी क्षमता है, लेकिन उसको समझने की क्षमता हमारी और आपकी नहीं है। हम उस श्लोकों को पढ़ के नहीं समझ सकते, क्योंकि वेद तो वेद ही होता है, कोई भी युग में वो परम पवित्र ही होते हैं, लेकिन उसको समझने की क्षमता हमारी नहीं है। वो केवल प्रभुपाद जी के लिखे गए तात्पर्यों से ही हम समझ सकते हैं, अन्यथा असंभव है। इतने तात्पर्यों के बाद भी 100% फेथ हमारे हृदयों में कहां है? इसका एक कारण यही है कि हम इनको कम पढ़ते हैं और कुछ ज्यादा करते हैं। यहां तक कि अगर जैसे मैंने शुरुआत में पूछा कि कितने लोगों ने भागवतम पूरा नहीं पढ़ा है, तो बहुत लोग, अधिकांश लोग कहते हैं हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है, इतना समय आपके पास नहीं है, नहीं पढ़ा है। प्रभुपाद जी ने कितना सरल कर दिया भगवत धाम जाने के लिए, पता है? क्योंकि 12 स्कंद, 18,000 श्लोक, और अगर आप तात्पर्य का शब्द अर्थ पढ़ने को बता रहे हैं तो ऐसे कितने ग्रंथ हैं, बहुत सारी किताबें हैं ना, 18 कुछ किताबें हैं, इतना कहां हम इस जीवन में पढ़ सकते हैं। चलो आपकी बात मान लेते, अन्य नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसको भी हम नहीं पढ़ सकते। अगर इसको भी नहीं पढ़ सकते फिर भी अगर भगवत धाम जाना है, शिला प्रभुपाद जी ने स्वयं कहा है केवल जो दसम स्कंद जीवन भर पढ़ते रहेगा ना, फ्रॉम फर्स्ट पेज टू द एंड एंड रिपीट इट, कीप ऑन रिपीटिंग टिल यू आर अलाइव, आप निश्चित भगवत धाम जाएंगे। इस दसम स्कंद में इतनी शक्ति है। अरे प्रश्न होता है दसम स्कंद सीधा पढ़ने का तो मना करते हैं हम, इस्कॉन वाले ही मना करते हैं, आचार्य हमारे मना करते हैं, आप कैसे बोलते हैं सीधा दसम स्कंद? प्रभुपाद जी ने स्वयं मना किया है। प्रभुपाद जी ने सीधा दसम स्कंद मना नहीं किया है, दसम स्कंद की रासलीला पे सीधा जाने का मना किया है। प्रभुपाद जी दसम स्कंद आप पढ़ सके इसीलिए दसम स्कंद को कृष्णा बुक के नाम पे लिख दिया उन्होंने। दसम स्कंद का कृष्णा, कृष्णा जो बुक है वो दसम स्कंद ही है, लेकिन उसको पहले से हम जैसे लोग जो अन्य ग्रंथों को पढ़ने का समय नहीं है या बुद्धि नहीं है या तैयारी नहीं है, उन लोगों के लिए कृष्णा बुक बनाई कि इसको पहले पन्ने से पढ़िए, पहले शब्द से, क्योंकि उसमें जो शुरुआत की अनित्य लीलाएं जो है अनित्य लीलाओं का अर्थ होता है भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, ऐसी भगवान की लीला जो वैसे तो हमेशा नित्य होती है लेकिन उसे अनित्य इसीलिए कहते हैं कि केवल भूलोक वृंदावन में होती है, गोलोक वृंदावन में नहीं होती। ऐसी कौन सी लीला है भगवान की जो भूलोक में होती है गोलोक में नहीं होती, बताइए। भगवान की ऐसी कौन सी लीला है जो भूलोक में होती है गोलोक में नहीं होती, हाँ कंस का वध, असुरों के वध करने की लीलाएं गोलोक में नहीं होती, क्यों? वहां कोई असुर है ही नहीं, किसको मारेंगे, ये केवल भूलोक वृंदावन में ही होती है। ऐसी लीलाओं को अनित्य लीला शिला भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, और वहां पे वो भी कहते हैं, हमारे प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि हम सभी भक्तों को भगवान की जो असुर मारने की जो लीला है भागवतम दशम स्कंध के शुरुआत के अध्यायों को बार बार पढ़ते रहना चाहिए, इसीलिए कि हमारे हृदय में जितने भी असुर हैं उस लीलाओं को हम पढ़ेंगे तो भगवान स्वयं अपने हृदय में बैठे हुए उन हृदय के असुरों का भी विनाश कर डालेंगे। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य सबको भगवान स्वयं हृदय से खत्म करेंगे। जब भी हम तृणावत की कथा पढ़ें या कंसवत की कथा पढ़ें या किसी और असुर पूतनावत की कथा पढ़ें निश्चय हमारे हृदय से असुर जाएगा, ये गारंटेड है, क्योंकि स्वयं भगवान वहां पे ये करेंगे कार्य, ये भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं। तो दशम स्कंध केवल पढ़ सकते हैं, शुरुआत कीजिए पहले पृष्ठ से, अंत तक आइए, आगे कुछ नहीं दिमाग चल रहा है वापस रिपीट करिए, वापस रिपीट करिए, ऐसे जीवन भर पढ़ते रहिए, निश्चित व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है, इतना पोटेंसी इसी दशम स्कंध में है। और जिसको जिसे ज्यादा फिलोसॉफी नहीं है यानी बुद्धि की जरूरत ही नहीं है, कहानी के रूप में है ना, कलयुग में लोगों को कहानी पसंद है, इसीलिए देखो बॉलीवुड सिनेमा ज्यादा चलती है क्योंकि उसमें कहानी होती है, फिलोसॉफी नहीं होती है, इसीलिए टीवी सीरियल्स बहुत चलती है क्योंकि उसमें केवल कहानी होती है, कुछ भी नहीं मिला तो कुछ भी कहानी बना देंगे वो लोग सीरियल वाले, लेकिन चलती रहती है, लोग हजारों लोग देखते हैं क्योंकि कहानी, कलयुग वासियों के पास बुद्धि नहीं है फिलोसॉफी समझने की। प्रथम स्कंध पढ़ेगा भक्त 20 साल के बाद भी बोलता है वो प्रथम स्कंध का एक दो चैप्टर पढ़ा आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, समझ भी नहीं आ रहा है, कहां से समझ में आएगा, इतना गुह्यतम फिलोसॉफी है शुरुआत में नहीं समझ में आएगा, फिर छोड़ देता है, फिर 2 साल के बाद वापस उठाता है प्रथम स्कंध ही उठाता है, वापस छोड़ देता है, फिर 3 साल के बाद प्रथम स्कंध उठाता है वापस छोड़ देता है, समझ में ही नहीं आ रहा, जाने दो, टीवी सीरियल अच्छी है समझ में तो आता है, और हम तो कृष्णा की देखते हो संस्कार है ना, उसमें तो हरे कृष्णा राधे कृष्णा कर रहे हैं, ऐसा जस्टिफिकेशन भी लोग दे देते हैं कि वो भी तो कृष्णा की सीरियल है ना, लेकिन ठीक है फिलोसॉफी नहीं समझ में आ रही, दशम स्कंध को उठाइए। प्रभुपाद जैसे महात्माओं ने इतना जो हमको अमूल्य 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 कीमती इंस्ट्रूमेंट दिया है भगवत धाम जाने का सरल रास्ता उठाइए, बहुत ही अच्छी कहानियां है, ये कंस के वध की कहानी अच्छी है एकदम मस्त है, बिल्कुल इसमें स्पष्ट प्रभुपाद जी समझाते हैं कैसे असुरों का वध होगा साथ साथ में हमारे हृदय के असुरों का भी वध हो जाएगा। गुरु में अगर किसी को विश्वास उठ गया है उसको पूतना की कथा है ना रोज एक बार पढ़नी चाहिए, देखिए 1 साल में आपको गुरु के ऊपर 100% विश्वास आ जाएगा, क्योंकि फॉल्स फाल्गु गुरु का प्रतीक है पूतना। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं पूतना का वध की कथा पढ़ने वाले व्यक्ति को गुरु में विश्वास श्रद्धा 100% आता है, क्योंकि फाल्गु गुरु कौन है, पूतना का प्रतीक है, वो पूतना ही है जो बाह्य रूप से तो अपने सुंदर वस्त्र भक्त गोपी का रूप लेके आती है, ऐसे लगता है जैसे भगवान की महान भक्त है, हाँ भगवान की सेवा के लिए आई है, संतान करेगी अपना, लेकिन आंतरिक रूप में वो भगवान को खत्म करने आई है। फाल्गु गुरुओं का यही कार्य होता है, बाह्य रूप में तो महान भक्त के रूप में रहते हैं लेकिन आंतरिक पर्पस रहता है कि भगवान खत्म हो जाए और मैं भगवान के रूप में प्रख्यात हो जाऊं, तो ये पूतना होती है। तो इस तरह से हमको देखना चाहिए कि विश्वास के साथ प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, अब कहीं कितने भक्त है जो प्रभुपाद जी पे इतना विश्वास करते थे, आप उनको उनको जीवन में जो भी प्रभुपाद जी ने बताया ना वो कितना भी कठिन कार्य रहेगा वो लोग अपना पूरा जीवन लगा के करते हैं। अरे कभी कभी प्रभुपाद जी केवल एक स्वाभाविक एक छोटी बात कर लेते ना, लोग अपना पूरा जीवन का धन और जीवन लगा देते उस छोटी सी घटना को पूर्ण करने के लिए, एक पुष्कर कृष्ण महाराज है अपने इस्कॉन के, एक बार जर्मनी में प्रभुपाद जी गए, तो जर्मनी के बाद प्रभुपाद जी भारत में आने वाले थे, तो प्रभुपाद जी ने बस एक ऐसे ही बात कर रहे थे, नॉर्मल, कोई बड़ा कोई सिद्धांत नहीं दिया था, कोई बात आदेश नहीं दिया था, बात करते करते उन्होंने प्रभुपाद जी ने कहा कि प्रभुपाद जी कहते कि जब भी मैं भारत जाता हूं ना प्रचार करने के लिए, तो क्योंकि भारत में अपने पास खुद की कार नहीं है ना, तो मुझे किसी लाइट मेंबर की कार को हमेशा बुलाना पड़ता है, तो इस बार भी कुछ देख लेना, जब मैं भारत जा रहा हूं किसी लाइट मेंबर से संपर्क कर लेना। ऐसे कैजुअल बात थी, कोई बहुत बड़ी ये नहीं थी, और ये बात चल रही है जब इस्कॉन के पास इतना संपत्ति नहीं था, एक एक मंदिर, छोटा छोटा मंदिर एक एक जगह में चलाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ा। आज इस्कॉन बहुत अलग है, उस समय का इस्कॉन बहुत अलग था, लेकिन पुष्ट कृष्ण प्रभु ने क्या सोचा, प्रभुपाद जी को कष्ट हो रहा है, भारत में कार नहीं है, अपने को कुछ भी करके भारत में कार लेके जाना है, तो किसी और दो भक्त साथ में थे, उन्होंने बताया अपने पास तो ये सेंटर चलाने के लिए इतना पैसा नहीं है, भारत में कार कैसे लेके दे, तो बोले नहीं कुछ भी करो लेकिन हमको प्रभुपाद जी को एक कार लेके देनी है भारत में। तो बोले भारत में कार कितने की आती है, जरा इंक्वायरी करो, पता करो कितना पैसा लगेगा। तो पुष्ट कृष्ण महाराज क्या बोल रहे मालूम, उस समय प्रभु थे, बोले नहीं नहीं, जो भगवान के स्वयं अनुयायी है, हाँ, ही इज रिप्रेजेंटिंग कृष्णा इन दिस मटीरियल वर्ल्ड, उसके लिए भारत की शादी हो ही नहीं सकता, स्वयं भगवान जा रहे, उनके लिए तो हमें मर्सिडीज गाड़ी चाहिए, जो उस समय की नंबर वन टॉप गाड़ी, वो भी भारत में नहीं जर्मनी में खरीदेंगे। अरे बोले जर्मनी में खरीद के क्या फायदा, भारत में चाहिए। अरे बोले हम ड्राइव करके जाएंगे, जर्मनी से ड्राइव करके भारत लेके जाएंगे, उसमें क्या है, भारत में मिलती नहीं है उस समय मर्सिडीज, लेना है तो जर्मनी से ही आती थी, और इधर से लेना है तो वो इंपोर्ट ड्यूटी के साथ बहुत कॉस्ट हो जाएगी, उतना पैसा नहीं है। 9000 किलोमीटर है जर्मनी से रास्ता इधर का, वो सब लोग ने अपना जीवन का पैसा लगा के मर्सिडीज कार खरीदा, और मर्सिडीज कार को वो तीनों जन ड्राइव करते हुए जर्मनी से भारत पहुंचे, प्रभुपाद जी आए उसके पहले वो लोग पहुंच गए थे, और प्रभुपाद जी को वेलकम किया मर्सिडीज गाड़ी में। ये था विश्वास गुरु के प्रति, ये थी श्रद्धा। सोचिए उस जमाने में मर्सिडीज गाड़ी, एक रिपोर्टर ने पूछ भी लिया, आप इतने बड़े साधु होके इतनी बड़ी महंगी कार, क्योंकि भारत में मर्सिडीज बोले तो बहुत बड़ी बात होती है, तो बोले ये तो कुछ भी नहीं है। प्रभुपाद जी उत्तर देते, ये तो सादी कार है, मेरे लिए तो गोल्डन कार आनी चाहिए एक्चुअली, क्योंकि मैं भगवान कृष्ण को प्रत्यक्ष आप सब लोगों को दे रहा हूं यथा रूप में, हा? मैं कृष्ण को दे रहा हूं, कृष्ण के अनुयायी को कृष्ण के प्रचार के लिए सोने की कार होनी चाहिए, ये क्या शादी भैया पतरे की कार है मर्सिडीज, तो ये सही बात है एक्चुअली, भगवान के लिए सब कुछ होना चाहिए। अब इन सब बातों को सुनते समझते हैं तो हमारे मन में ये प्रश्न होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हाँ, हम लोग भगवान के लिए क्या कर रहे हैं, हमारा कितना विश्वास है गुरु पे, साधु पे। कभी कभी वरिष्ठ वैष्णवों के प्रति हमारे मन में शंकाएं आती है, लेकिन इन वरिष्ठ वैष्णवों ने अपने जीवन में प्रभुपाद जी के लिए क्या किया है उसको पढ़ेंगे ना, लेकिन वो कब पढ़ेंगे हम, जब अन्य ग्रंथों को छोड़ के प्रभुपाद जी की लीलामृत पकड़ेंगे, या हरिशौरी प्रभु ने जो ट्रांसेंडेंटल डायरीज लिखी है, या तमल कृष्ण महाराज ने सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट लिखी है, या भक्ति विकास महाराज ने जयशिला प्रभुपाद लिखी है, इन ग्रंथों को पढ़ेंगे तो पता चलेगा। इन ग्रंथों को हमने लॉक मार के कहीं इस्कॉन की लाइब्रेरी में रख दिया है, और नए नए किताबों को उठा उठा के अपना प्रचार हम लोग कर रहे हैं। दैट्स टू बैड एक्चुअली, प्रभुपाद जी को पीछे छोड़ के जा रहे हैं हम लोग, नेवर डू दैट, व्हाट इज द यूज ऑफ डूइंग ऑल दिस थिंग्स। हाँ, यू मे बी अ फेमस लोग गोलक वृंदावन जाते हैं ऐसा कभी मत सोचना, गोलक वृंदावन ऐसे ही लोग जाएंगे जिसको कोई जानता ही नहीं है, बहुत कम लोग जानते हैं, एकदम ही हम्बल, एकदम ही हम्बल रहता है, जो लो प्रोफाइल, जिसका जीवन का लक्ष्य केवल साधुओं की सेवा करना, गुरु के आदेश और वचन के लिए अपना जीवन दे देना, ऐसे ही लोग गोलक वृंदावन जाएंगे, क्योंकि फेमस बनने जाओ तो वो रास्ता नहीं है गोलक वृंदावन जाने का। हाँ, अपने आप फेम और कीर्ति आपके पीछे पड़ेंगे वो अलग बात है, आप अगर शत प्रतिशत भगवान की सेवा में अपना लो प्रोफाइल रखते हुए जीवन दे रहे हैं, तो कीर्ति का जो देवता है वो तो आपका दास बनेगा, उस तरह से आपका नाम हो जाएगा, लेकिन वो हम नहीं कर रहे हैं, वो तो कीर्ति के देवता कुछ भी करते हैं, और भक्त उसका लो प्रोफाइल ही मेंटेन करता है थ्रू आउट हिज लाइफ। ऐसे ही भक्त इस कौन में, जैसे रथ यात्रा में आजकल हम देखते हैं कि कहीं पे रथ यात्रा चल रही है तो रथ में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा विराजमान होते हैं, उनके नीचे प्रभुपाद जी विराजमान होते हैं, लेकिन रथ के नीचे एक छोटा सा फोटो रहता है, किसका रहता है वो, जयानंद प्रभु का। जयानंद प्रभु के इस्कॉन के समय का इतिहास पढ़ लीजिए, एकदम लो प्रोफाइल, किसी लीडर में उनका नाम नहीं है, कोई टेंपल प्रेसिडेंट में उनका नाम नहीं है, हाँ कोई प्रचारक नहीं है, कभी प्रवचन नहीं देते हैं कहीं पे नहीं, लेकिन आज उनका फोटो आगे है, एकदम लो प्रोफाइल, लेकिन क्या फर्स्ट क्लास जीवन जिए, बहुत अल्प जीवन जिए, लेकिन प्रभुपाद जी के बताया एक वचन के रथ यात्रा के लिए तुम्हें रथ बनाए, अपना पूरा धन देकर जीवन देकर समर्पित सैन फ्रांसिस्को की प्रथम प्रख्यात रथ यात्रा की थी, आज वो गोलक वृंदावन में भी इसका इतिहास रहेगा। तो ऐसे व्यक्ति भगवत धाम जाते हैं। एक बार मुकुंद गोस्वामी एक इस्कॉन की प्रोग्राम में जन्माष्टमी के दिन, नहीं सॉरी प्रभुपाद व्यास पूजा के दिन, उसके दूसरे दिन का जो था, उसमें सबको बता रहे थे कि आप लोग आइए और अपना अपना प्रभुपाद जी के बारे में अपना मंतव्य प्रकट करिए, जैसे हम लोग करते हैं ना ऑफरिंग। तो बड़े बड़े लीडर्स आ रहे थे, अपना अपना मंतव्य दे रहे थे, प्रभुपाद जी इतने महान है, ये किया वो किया, अच्छा चल रहा था सब कुछ। फिर एक जन ने किसी ने बताया कि अरे वो किचन में वो जो रोटी बनाते हैं ना, वो भक्त को भी बोलो ना कुछ बताएं प्रभुपाद जी के बारे में। तो वो भक्त को बुलाया, अरे बोले आप भी आ जाओ। अब मुकुंद गोस्वामी सोचने लगे कि अभी ये भक्त तो ना कुछ पढ़ा लिखा है ज्यादा, ना कुछ आता है, इसका एक काम है किचन में कुकिंग करना। हाँ जैसे हमारे यहाँ किचन में समझो दीन बंधु पूरा जीवन क्या कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं भगवान के लिए। अभी ऐसा कोई हम कभी सोचते नहीं कि चलो इनको भी बुला लाओ आके बैठो तुम भी कुछ बोलो, ऐसा कोई सोचता नहीं है ना। तो मुकुंद गोस्वामी को बड़ा आश्चर्य लगा, कह रही है इसको क्यों बुला रहे। अब उसको बुलाया, बोले आपको महाराज ने बुलाया, वो आए, बोले महाराज क्या आदेश है, बोले कुछ बोलो प्रभुपाद जी के बारे में। वो कुकिंग कर रहे थे, रोटी बना रहे थे, कुछ सोचा भी नहीं था, कभी बुलाया नहीं, कभी बोला नहीं, कभी सोचा नहीं, उसको अचानक बुला के खड़ा कर दिया। और ज्ञानी लोग रहो तो उसको तो कभी भी रात में भी उठा के बोलो तो 8 घंटा बोलते रहेंगे, और नींद में से उठे भी बोलेंगे और आपको नींद आ जाएगी उतना बोलेंगे। लेकिन ये हमारे जैसे सीधे साधे बेचारे कुछ आता नहीं, इसको अचानक खड़ा कर दिया बोलो तो क्या बोले। तो वो तो बेचारा घबरा गया और कांपने लगा, माइक के पास आया, बोल नहीं पा रहा ठीक से। तो उसने क्या बोलना शुरू किया, देखिए ध्यान से सुनिए, बोले कि क्या बताऊं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, मुझे बुलाया अभी, आपको मालूम है वो विदेश था, देश भारत की बात नहीं चल रही, विदेश में जिन लोगों ने नया इस्कॉन सेंटर से नए नए भक्त जुड़ रहे हैं, यानी रोटी चपाती क्या होती है किसी को ज्यादा मालूम नहीं है, इस्कॉन वाले खिला के प्रसाद में कुछ लोगों को पता किया था कि चपाती क्या होती है, वो तो ब्रेड खाते हैं ना। हाँ जो मैं कहता हूँ ना हमेशा कि गाय की सेवा करने वाले दूध और रोटी खाते हैं और कुत्ते की सेवा करने वाले ब्रेड बटर खाते हैं या ब्रेड चीज खाते हैं। कलयुग का आश्चर्य है, जो गाय माता हमें दूध देती है पवित्र, हाँ सब उसका यूरिन या स्टूल देती है, एंटीसेप्टिक उससे दवाएं बनती है, सब कुछ होता है, वो गाय माता जो कभी हमको भाव भाव करके भसती नहीं है, परेशान नहीं करती है, सभी तरह से हमें मदद करती है, उसके लिए हजारों स्लॉटर हाउस है। और जो कुत्ता भाव भाव ही करता है, जब देखो जहां देखो हाँ काटने को दौड़ता है, पीछे दौड़ता है, हाँ न कभी दूध या कुछ देता है, गंदा मलमूत्र भी साला इतना गंदा करता है, और उस कुत्ते को मारने के लिए एक भी स्लॉटर हाउस नहीं है, एसी कार और एसी बंगले लोग बनाते हैं। यह है कलयुग का दुर्दैव। अब स्लॉटर हाउस उसके लिए एक्चुअली खोलना चाहिए, अगर खोलना ही है तो माउस खाने की इच्छा है तो स्लॉटर हाउस कुत्ते का खोलो और खाओ, कम से कम भसने वाले भौंकने वाले परेशानी कम होगी, काटने वाले की काटेगा तो सीधा 14 इंजेक्शन, इतना बड़ा डेंजर है, फिर भी उसको घर में पाल रहे हैं। और गाय बिचारी कितनी अच्छी है, एंटीसेप्टिक है, काट भी लेगी तो शरीर में कहीं घाव है तो वो भी चला जाएगा, काटती नहीं है बिचारी, लेकिन बाय चांस प्रेम में कभी काट ले तो उसके लिए स्लॉट हाउस है। ये दुर्दैव नहीं तो क्या है, ये शास्त्रों से और गुरु से और साधुओं से विश्वास उड़ने का ये सबसे बड़ा यह है। वो लड़का बोल रहा है प्रभु जी के रोटी बनाना चाहिए, ऐसा बोलने का शुरू कर रहा। देखो प्रभुपाद जी का ऑफरिंग में उसको बुलाया, बोलता है कि क्या बोलू पता नहीं, रोटी अच्छा बनाना चाहिए। बोले रोटी क्या है पता है आपको? रोटी वो जो गेहूं होता है ना, होल व्हीट, जिससे ब्रेड बनता है, वो होल व्हीट आटा, उसको ऐसा पानी डालो, हाँ उसको इस तरह बनाओ, क्योंकि वहां के लोगों को पता नहीं है ना, तो उसके लिए एक प्रोसीजर है। बोले इस तरह से आटा गूंथो, इसको इस तरह से बेलना चाहिए, और उसको फिर तवे पे रखने का, वो इन्फ्लेट होती है बलून की तरह। वो इतना खुशी खुशी हंसी हंसी बता रहा है ना, उसका मुखचंद्र भी इन्फ्लेट हुआ खुशी के मारे। रोटी जैसे इन्फ्लेट होती है ना, फुलका, उसका मुखचंद्र फुलका हो जाता है। बोले ऐसे बनाने का कि ढम करके मारने का, घी लगाने का, और वो मस्त गरम रोटी है भगवान कृष्ण को खिलाने का, बड़ा आनंद आता है। वो कहता है फिर वो भगवान कृष्ण खाएंगे उस गरम गरम रोटी सब्जी वगैरह को, फिर वो रोटी भक्तों को प्रसाद में देने का। आप लोगों ने रोटी नहीं खाई है ना, आज आप इधर प्रसाद लेके जाना, रोटी बहुत अच्छी बन रही है, बहुत रोटियां बनेंगी आज। बस इतना बोल के बोला कि हरे कृष्णा, चल दिया। ये ऑफरिंग थी उसकी। अब बुद्धिशाली लोग मन में सोचते होंगे कि क्या ऑफरिंग है, क्यों बुलाते हैं ये टाइम पर। अरे उसको बुलाना चाहिए, कितना बड़ा पंडित है, क्या अच्छा बोलता है, कुछ जानने को मिलता रहा, इसको क्या बुलाना है। लेकिन मुकुंद गोस्वामी ने बाद में अपना रियलाइजेशन में उन्होंने लिखा कि सबसे बेस्ट ऑफरिंग उसका ही था। ही वॉज 100% डेडिकेटेड टू हिज सर्विस गिवन बाय श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद जी ने उसको ये जो रोटी बनाने की, प्रसाद बना के भगवान को ऑफर करें, उस सेवा में वो इतना डूबा हुआ था, निमग्न था, डेडिकेटेड था, ऑफरिंग भी अपनी ही सेवा को, रोटी कैसे, और एकदम हंसते हुए, कोई दुख या चिंता का अभाव नहीं है, सब लोग मस्त फेस्टिवल मना रहे हैं, और मेरे को किचन की गर्मी में रखा है रोटी बनाने के लिए, कोई ऐसा भाव नहीं था। ऐसे भक्त लोग भगवत धाम जाते हैं, 100% अपनी सेवा जो गुरु ने दी है अच्छी तरह से निभाते हैं, बिना कोई कंप्लेन, हंसते हंसते, विश्वास गुरु साधु शास्त्र पे पूर्ण विश्वास, गुरु ने दिया है ना करो। भक्ति विकास महाराज कभी मिले ही नहीं है प्रभुपाद जी को, कभी नहीं मिले है प्रभुपाद जी के शिष्य, टेलीफोनिक इनिशिएशन हुआ था, कभी नहीं मिले, लेकिन विश्वास देखिए। आज जीवन ब्रह्मचारी रहते हुए अनेक ग्रंथों का निर्माण प्रभुपाद जी के आदेश के अनुसार कर रहे हैं। अध्याय शिला प्रभुपाद, उन्होंने किताब लिखी है प्रभुपाद जी के लीलाओं में, इस प्रभुपाद जी के प्रति उनका क्या भाव है उसके ऊपर किताब लिखी है। ऐसे ऐसे महान लोग हैं। एक विशाखा माता जी है, प्रभुपाद जी की शिष्या है, वरिष्ठ शिष्या। एक बार जुहू मंदिर आए थे वो प्रभुपाद जी के साथ में, तो शिला प्रभुपाद जी जो है वो जुहू मंदिर की मॉर्निंग परिक्रमा हमेशा करते। तो एक दिन क्या हुआ, मॉर्निंग परिक्रमा करके विशाखा माता जी और हरिविलास प्रभु और अन्य भक्त लोग सब आ रहे थे प्रभुपाद जी के साथ। कार का दरवाजा खुला, प्रभुपाद जी बैठे, फिर सब भक्त लोग बैठे, प्रभुपाद जी विंडो सीट पे बैठे थे। एक स्त्री भिखारन जो थी, बेगर, वो अपना एक बच्चा गोदी में लिए, तीन चार बच्चे हाथ में लिए, प्रभुपाद जी के पास आके कहती है पैसा दो। अब इस्कॉन की वैसे प्रणाली है कि भक्त लोग प्रसाद देते हैं, पैसा नहीं देते हैं, लेकिन उस समय प्रसाद लेके आए नहीं थे कोई, किसी के पास प्रसाद नहीं था। प्रभुपाद जी ने अपने जेब में हाथ डाला और कुछ सिक्के निकाले, चौवनी अठनी, जो उस समय चौवनी अठनी बोले तो बहुत कीमत होती थी, और सिक्के उसके हाथ में दे दिए, स्त्री के हाथ में, और कार आगे चली। तो विशाखा माता जी के मन में प्रश्न हुआ कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण भी कहते हैं और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में भी लिखा है कि तमोगुणी चैरिटी नहीं करना चाहिए, तमोगुणी दान नहीं करना चाहिए, वो आपको कर्म बंधन में बांध देता है। भिखारियों को बिना जाने सोचे समझे इसका क्या उपयोग होगा उसको दान करेंगे तो हमको बांधता है। इस प्रिंसिपल को इस्कॉन का हर भक्त जानता है, सभी ने सुना हुआ है। और हमारी वृत्ति क्या रहती है कलयुग में, जो सिद्धांत हमें अपने पैसों को बचाने के लिए मदद करता है उसे तो हम तुरंत ही स्वीकार कर लेते हैं, 100% 100% सरेंडर। जो सिद्धांत हमारा पैसा खर्च करवाता है सोचेंगे अगले जन्म के लिए रिजर्वेशन अभी नहीं, जो सिद्धांत मेरे लाभ के लिए है वो सिद्धांत का हम गुणगान गाएंगे, लेकिन जो सिद्धांत मेरे विरुद्ध जा रहा है उसको मोड़ मचोड़ के इधर उधर करेंगे। ये हर व्यक्ति का, विशेष करके भारतीय व्यक्ति का ये गुण कहो चाहे अवगुण करो, है हर एक भारतीय के हृदय में। वेदों को कैसे निचोड़ के अपने स्वार्थ का निकाल के पी के बड़ा पंडित या भगवान का अवतार बन जाना, या अपने मठाधीश को मठाधीश बन जाना। और बात वेदों का एक परफेक्ट श्लोका के साथ ऐसा मंतव्य देंगे ना कि वो जो कर रहा है वही सैद्धांतिक है, ऐसा लगेगा कि हर भारतीय का ऐसा हृदय हो चुका है। कलयुग का ही असर है। तो हम लोग तो भिखारी को कभी पैसा नहीं देंगे, आठ आना एक रुपया क्यों, क्योंकि बचाना है ना यार, सिद्धांत का पालन कर रहा हूं, शरणागत है। बहाना भी निकाल देंगे, अरे प्रभुपाद जी ने कहा, तात्पर्य में लिखा है। अब विशाखा माता जी को प्रश्न हुआ ऐसे कैसे, तो विशाखा माता जी ने प्रभुपाद जी को सीधा पूछ लिया, प्रभुपाद जी यू ओनली सेड इन परपर्ट इन श्रीमद भगवद गीता नॉट टू गिव तमोगुणी इग्नोरेंस, चैरी मोड ऑफ इग्नोरेंस, नाउ यू गेव हर, यू डोंट नो हर एंड यू गेव हर सो मेनी कॉइन। प्रभुपाद जी कुछ नहीं बोले, एक दो मिनट बोले नहीं, कार चलती रही। तो विशाखा माता जी डर गई, वो सोची कि अपराध हो गया लगता है, प्रभुपाद जी नाराज हुए लगते हैं। फिर थोड़ी और आगे कार चली तो प्रभुपाद जी कुछ बोलते बोल नहीं रहे, तो विशाखा माता जी ने सोचा अब मैं सिचुएशन का थोड़ा बदलूं, मेरे से ही गलती हो गई है। तो वो खुद बोली, आई थिंक प्रभुपाद जी मनी इज ऑल्सो कृष्ण प्रसाद राइट, पैसा भी तो कृष्ण का ही प्रसाद है ना। प्रभुपाद जी बोले यू आर राइट, इतना ही बोले, यस यू आर राइट, और आगे गाड़ी बढ़ी। फिर कुछ प्रभुपाद नहीं बोले, लेकिन अन्य भक्तों ने बताया समझाया आगे चल के अनेक बार। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि पैसा भी तो कृष्ण का प्रसाद है, उसको देना चाहिए, प्रसाद कृष्ण का देना चाहिए। गलती आपकी है कि आप प्रसाद लेके नहीं घूम रहे हो, उसकी गलती नहीं है। अब आपके पास भोजन प्रसाद नहीं है तो धन प्रसाद दो कृष्ण का, लेकिन देना चाहिए गरीब को। गरीब जब हाथ फैलाए और वैष्णव मना कर दे तो वो वैष्णव ही नहीं होता है। ये सिद्धांत तो हमारे गुजरात के नरसिंह मेहता ने 100% अपने जीवन में बताया है कि कोई हाथ फैलाए और वैष्णव कह दे कंजूस मारवाड़ी के नहीं है मेरे पास, ये तो बहुत गलत है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने भी जब धन दिया था गरीब को, एक भिखारी को, उनके शिष्यों ने भी पूछा था ये क्या कर रहे हो, नहीं देना चाहिए। भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहे इतने निर्दयी और निकृष्ट मत बनो, हृदय को पाषाण मत बनाओ, पत्थर मत बनाओ। एक गरीब आपके भीख से तड़पता हुआ व्यक्ति हाथ फैला रहा है और तुम्हारे जेब में पैसा है सब कुछ है, फिर भी तुम चलते रहो, हाँ हम तो एकदम डिवोटी है करके, ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्सिटी में मत रहो। दीजिए कुछ ना कुछ दीजिए, प्रसाद देना है, नहीं लाए तो आपका ये है, आप दीजिए। प्रभुपाद जी ने वो सिद्धांत स्थापित किया, लेकिन इसका पालन करना कठिन होता है। तो ऐसे कई कितने सिद्धांत होते हैं केवल हम प्रभुपाद जी के जीवन लीला से सोच समझ सकते हैं। हाँ इंट्रिकेट, हाँ गहना कर्मणो गति, कर्म की गति इतनी गहन होती है कि हम सीधे वैदिक शास्त्रों से नहीं समझ सकते, इन आचार्यों से समझ सकते हैं, शिला प्रभुपाद जी के जीवन लीला से समझ सकते हैं। इसीलिए शिला प्रभुपाद जी की लीलामृत जितने भी अलग अलग गुरु महाराज ने लिखी है सभी को पढ़ना चाहिए, सभी को जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए कि मैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट किताब पढ़ूंगा, मैं जय शिला प्रभुपाद पढ़ूंगा, मैं लीलामृत पढ़ूंगा। इतनी भी किताबें हैं। हरि सौरी प्रभु ने जो उनके पर्सनल सेवक है उन्होंने ट्रांसेंडेंटल डायरीज लिखी है, 6 volumes है उसके, 7th और 8th भी शायद बाहर आ चुका है। एक एक पन्ने को, एक एक लीला को प्रभुपाद जी की आप पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि आध्यात्मिक जीवन क्या होता है, हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। ट्रांसेंडेंटल डायरीज को पढ़िए, सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट को पढ़िए, तमल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने लिखी है। एक घटना मुझे याद आ रही है, तमल कृष्ण महाराज का उस किताब, पूरा जो किताब है उसमें सबसे बेस्ट मुझे जो पास्ट टाइम शिला प्रभुपाद जी का लगा वो क्या था, एक बार प्रभुपाद जी एक विदेश के मंदिर में 1967 शुरुआत के इस्कॉन के दिनों के कुछ समय की घटना, प्रभुपाद जी एक मंदिर में थे, वहां पे केवल तमल कृष्ण महाराज और एक भक्त और प्रभुपाद जी तीन ही जन थे, बाकी कांग्रीगेशन। तो प्रभुपाद जी ने बताया उस दिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का आविर्भाव दिन था, उनकी व्यास पूजा का दिन था। तो प्रभुपाद जी ने तमल कृष्ण महाराज को बुला के बताया कि तमल कृष्णा टुडे वी हैव अ सेलिब्रेशन। अब उसको पता नहीं आज क्या है, आज जन्माष्टमी नहीं, रामनवमी नहीं, बोले आज क्या है, तो बोले टुडे वी हैव अपीयरेंस डे ऑफ माय गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, वी विल सेलिब्रेट, गो एंड प्रिपेयर नाइस प्रसादम फॉर कृष्णा एंड 100 डिवोटीज। जो भी डिवोटीज आएंगे उन सबको हम एकदम मस्त फिस्ट प्रसाद देंगे, सबके लिए फिस्ट बनाओ। तो तमल कृष्ण महाराज बोले ठीक है, और एक भक्त जो था सेवक उनके साथ गए। आप सोचने लगे, पहली बात इतना धन नहीं है ज्यादा, अपने पास ज्यादा फिश नहीं बना सकेंगे, 5-6 सामग्री बनाएंगे, अभी 80-100 जन का बनाना है, अब कैसे बनाए, कितना समय लगेगा, वो सब सोच के लग गए। लेकिन गुरु का आदेश है ना, उन समय के लोग सोचते नहीं थे। ये जो मटेरियल कैलकुलेशन है ना, ये हम जैसे अश्रद्धालु लोगों के हृदय में आता है कि कैसे होगा, कितना पैसा है, ये कितना टाइम है। उन समय के लोग हैं ना, वो शास्त्र को जानते ही नहीं थे, वो केवल एक ही व्यक्ति को जानते थे, वो है प्रभुपाद जी, वही उनके शास्त्र, वही उनके गुरु, वही उनके भगवान, जो ये बोले करो, जितना हुआ करो, नहीं हुआ तो बता देंगे इतना हुआ। सोचते नहीं थे, बुद्धि नहीं लगाते थे अपने, करो, करने बैठ गए दोनों जन। सुबह को 10 बजे प्रभुपाद जी ने बोला था और 12:30 बजे प्रभुपाद जी ने किचन में एंट्री मारा, बोले सब तैयार है। अब 80-100 जन का 1-1.5 घंटे में बिना कोई प्रीवियस नोटिस तैयारी, सामग्री भी तो नहीं है, कहीं मार्केट से थोड़ा लाना फिर बनाना, ये तो पॉसिबल नहीं है। हम बना सकते हैं, हमारे में से कोई बना सकता है, 2 जन मिलके 80-100 लोगों के लिए 8-10 आइटम 1-1.5 घंटे में बिना नोटिस, हाँ प्रायर नोटिस नहीं, अचानक अभी उठा के बोले चलो बनाओ, तो पॉसिबल नहीं है, स्वाभाविक है। और ये तो फॉरेनर लोग, नए नए लोग, भारतीय वैसे ही आइटम को ठीक से बनाना अभी अभी सीख रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि व्हाट यू नॉट प्रिपेयर, 12:30 वी हैव अ सेलिब्रेशन, पुष्पांजलि राइट नाउ। तो बोलते प्रभुपाद जी, बट वी थॉट इट इज इन द इवनिंग, टुडेज प्रोग्राम इज शेड्यूल इन द इवनिंग 5:00, 5 बजे तक हम बना लेंगे। बोले नहीं, प्रभुपाद जी थोड़ा गुस्सा हो गए, अरे गुरुदेव का आविर्भाव का फेस्टिवल शाम को नहीं होता है, वो शाम का रेगुलर प्रवचन अलग होता है, ये तो अभी पुष्पांजलि करेंगे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का प्रोग्राम है अभी, स्पेशल फीस। तो वो तो एकदम डर गए, अभी नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद जी ने बोला बाहर निकलो अभी मैं करूंगा। प्रभुपाद जी अकेले ही वहां पे कुकिंग करना स्टार्ट करते हैं, एग्जैक्टली 30 मिनट के बाद बाहर निकले, अकेले ही 30 मिनट में 100 जन का 8-10 आइटम फिश प्रसादम 100% रेडी रखा था, शिला प्रभुपाद ने किया। 80-100 जनों का 8-1/2 घंटे में इतनी सारी, अकेले ही, कोई सर्वेंट नहीं था, कोई हेल्पर नहीं था। प्रभुपाद जी बाहर निकले, बोले नाउ वी आर गेटिंग लेट, एवरीथिंग इज रेडी, जस्ट स्टार्ट पुष्पांजलि, ऑफर इट टू कृष्णा एंड भक्ति सिद्धांत महाराज एंड गिव इट टू एवरीवन। सक्सेसफुल वो लोग आज तक सोच रहे, कमल कृष्ण महाराज और वो शिष्य, कैसे हुआ, कैसे हो सकता है, असंभव है। हैदराबाद स्टेशन पे प्रभुपाद जी ने एक भक्त को बोला, बहुत गर्मी है, पानी का प्यास लगा है, यहां तो पानी भी नहीं है, जाओ एक नारियल का वृक्ष था लंबा, उस पे बोले चढ़ो और एक नारियल तोड़ के लाओ। अब फॉरेनर शिष्य वैसे तैयार रहते हैं, और गुरु का आदेश, फटाफट एक फॉरेनर चढ़ गया, ऊपर गया, नारियल तोड़ा, एक नीचे फेंका और नीचे आ गया, बोले प्रभुपाद जी लीजिए पानी। और हैदराबाद में वो उस समय बिस्लेरी का जमाना नहीं था, उन दिनों में गर्मी में हैदराबाद में कहां से पानी, एक नारियल पानी तोड़ा और प्रभुपाद जी को दिया, बोले पी लीजिए, बाकी भी सब बेचारे प्यासे थे, अब गुरु को ही देंगे ना, गुरु को दिया प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी ने तो गुड़ 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 करके पीना शुरू किया। अब इतने नारियल में इतना पानी रहता है, स्वाभाविक है एक व्यक्ति को तो चाहिए, सब पी लिए। तो प्रभुपाद जी ने उसको दिया, बोले अभी तुम लोग बांट लो। अब वो लोग सोच रहे तुम लोग बांट लो, अभी कितना रहेगा, 2-4 बूंद रहेंगे, अभी 5-6 जन हम लोग है, एक एक बूंद मिलेगा, अभी इतने छोटे नारियल में कहां रहेगा। प्रभुपाद जी ने तो गुड़ 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 करके पी लिया सब कुछ। तो वो व्यक्ति देखा कुछ छोटा सा हिलने का आवाज से पता चला कुछ पानी जैसा लग रहा है, क्योंकि पूरा नारियल तो तोड़ने का कहां हथियार है, छोटा सा होल करके लिया। अभी वो सब लोग बोले अरे भाई तुम ही वरिष्ठ भक्त हो, तुम पहले पियो, तोड़ भी तुम ही आयो, मेहनत किया। तो उसने मुंह लगाया, अब पीने का शुरू किया तो गुड़गुड़ गुड़गुड़ पिए जा रहा है, पानी आते जा रहा है, वो पिए जा रहा है, उसको भी लग रहा है आश्चर्य। अब फिर लेकिन जब संतुष्ट होने लगा तब बेचारा क्या, अरे अन्य जन भी है तो दूसरे को दिया, वो भी गुड़गुड़ गुड़गुड़ गुड़ पीते जा रहे। ऐसा पांचों जन ने गुड़गुड़ गुड़गुड़ गुड़ पानी किया, पांचवें ने खत्म किया, तब पानी अंदर खत्म हुआ, तब जाके नारियल फेंका। तो असंभव को संभव करने वाले, अब ये मैं मिराकल इसके लिए नहीं बता रहा हूं कि कोई चमत्कारी साधु लग रहे, ये तो सामान्य असेट है श्रील प्रभुपाद जी के, बोलते ना साइड असेट। जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी रहता है ना, अंबानी परिवार का समझो कोई है, उसके पास करोड़ों रुपया रहता है, अमेरिका, रशिया, जापान सब जगह बड़े बड़े गेस्ट, अपने खुद के बंगलों और सब कुछ रहेंगे, तो उसका कभी कभी सामान्य असेट एक अपना गुजरात के गांव में भी ऐसे 50-100 एकड़ जमीन पड़े रहेगी, वो एकदम सामान्य है, जिसको उसको पता भी नहीं रहता है कि मेरा 100 एकड़ तो गुजरात में पड़ा, उसको मालूम ही नहीं, ऐसा सामान्य असेट। जैसे प्रभुपाद जी के लिए सब कुछ भी नहीं है, ट्रिवियल मैटर, ट्रिवियल असेट। लेकिन हमारे लिए तो हम तो सोच भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे पावरफुल पर्सनालिटी हमारे खिलाफ प्रभुपाद जी ने ये तात्पर्यों को दिया है। मूल्य है दुर्दैवम ईदृशम यह जनी न अनुराग, ये हमारा दुर्दैवम है कि हम प्रभुपाद जी के ग्रंथों को नहीं पढ़ रहे। मुझे जब भी कोई कहता है मंदिर से प्रवचन दो तो पहले मैं सोचता हूँ, डरता हूँ, क्यों दिया मुझे, क्यों बताया, मैं लायक भी नहीं हूँ, मुझे आता भी नहीं है, और क्या करूँ मैं, किसी अच्छे को बताना चाहिए, इतने सारे लोग इधर है, ना ना करता हूँ, 2-3 बार कभी कभी ना बोल देता हूँ, फिर 4-5 बार हाँ बोल देता हूँ, चलो ठीक है। लेकिन फिर एक दिन बैठता हूँ प्रभुपाद जी का सब ग्रंथों को, लीलाओं को देखता हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि अच्छा किया जिस प्रभु जी ने मुझे बोला, समाउ और अदर वे बाय देयर यू नो ओन कॉजलेस मर्सी, भगवान की व्यवस्था से, भक्तों के मुख से वो लोग मुझे एंगेज कर रहे हैं प्रभुपाद जी की लीलाओं को पढ़ने के लिए, जो मुझे विश्वास को बढ़ाता है, हा? जो मेरी एक दिन की साधना जीवन में हो जा रही है। कलकत्ता के मंदिर में एक बार श्रील प्रभुपाद जी के पास एक योगी आया था, कहां से, अफगानिस्तान से, बोले आके बोला है मुझे प्रभुपाद जी से मिलना है। अब फॉरेनर भक्त ऐसे थोड़ी किसी को भी मिलने देंगे। प्रभुपाद जी ने पूछा कौन है भाई, तो बोले कोई बता रहा है अपने आप को योगी अफगानिस्तान का, बोले भेज दो अंदर, और आके अपना जोली में से पोमेग्रेनेट निकालता है, अफगानिस्तान का पोमेग्रेनेट दाड़िम, पता है ना कितने प्रख्यात है अफगानिस्तान के दाड़िम, फेमस दाड़िम कहां के रहते हैं, अफगानिस्तान के, नहीं पता, वो फेमस रहते हैं। प्रभुपाद जी को 2 दाड़िम दिया, बोले मैं अफगानिस्तान से आपको दे रहा हूं। तो किसी ने पूछा अफगानिस्तान के दाड़िम आपके पास कहां है, आप तो इधर ही है, आप तो अफगानिस्तान तो गए नहीं है कभी, रहते नहीं है, बोले मैं योगी हूं, मैं मेरा हाथ लंबा करूं ना यहां से अफगानिस्तान तक जा सकता है, उधर से वृक्ष के तोड़ से तोड़ के मैंने आपको दिया है। अरे सबको बड़ा अच्छा लगा, सब भक्त लोग खुश करे, अरे बहुत अच्छा आदमी आया ये तो, किसी ने तो शायद पूछा भी रहेगा, अरे एक दाढ़ी मोहर तोड़ के दिखाओ तो माने, ये 2 तो थैली से निकाला, दिखाया रहेगा शायद, पता नहीं, लिखा नहीं है इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं, तोड़ के दिखाया। तो वो जब चला गया ना तो प्रभुपाद जी उसको बोले प्रभुपाद जी दाढ़ीम कलकत्ता में नहीं मिलते ये समय ये सीजन में, और इतने अच्छे हैं तो जरूर है अफगानिस्तान के, ये बात सही कर रहे, इतना बड़ा योगी, इतना इसका देखो योग है सिद्धि, अफगानिस्तान से तोड़ के आया। प्रभुपाद जी कुछ बोले नहीं, समझ गए ये लोग चमत्कार के ही नमस्कार करने वाले लोग हैं। हालांकि प्रभुपाद जी चमत्कार करके अपने आप को कोई भगवान साबित करने का कभी कोई मूड में विचार में भी नहीं रहते हैं, लेकिन अभी जगत चमत्कार कुछ कभी दिखाना पड़ता है, नमस्कार इसके लिए कि भाई कृष्णा को नमस्कार करो, जाओ तुम ऐसे नहीं सुधरोगे, ये चमत्कारी कृष्णा है, योगी नहीं होता है। उस दिन शाम को संध्या काल को संध्या आरती के पहले एक कलकत्ता का इस्कॉन का कांग्रीगेशन मेंबर एक पूरा थैली भर के अफगानिस्तान के दाढ़ीम लेके आया, बोले प्रभुपाद जी अफगानिस्तान से आया हूं, ये दाढ़ीम भगवान के लिए लाया हूं, विच वॉज नेवर थॉट अपॉन, यू नो कभी कोई नहीं सोच सकता था कि ऐसे अचानक दाढ़ीम आएंगे। तब भक्त लोग सोचे कि नहीं नहीं नहीं, हम लोग गलत दोपहर को सोच रहे थे, प्रभुपाद जी के लिए कुछ भी पॉसिबल है, सब कुछ हो सकता है। जो दाढ़ीम इस सीजन में यहाँ हो ही नहीं सकता, अफगानिस्तान से दाढ़ीम आ गए भगवान की सेवा में, बहुत सारे दाढ़ीम आए। तो देर आर सो मेनी सच इंसिडेंट्स। प्रभुपाद जी का जीवन लीला अमृत इतना हमें विश्वास दिलाता है। माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरी वन, जस्ट फॉरगेट ऑल अदर बुक्स, ऑल अदर ग्रंथस, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़िए। आपके गुरु भी कभी आपसे नाराज नहीं होंगे, कभी कंप्लेन नहीं करेंगे कि तुम अन्य ग्रंथों को क्यों नहीं पढ़ते हो, मेरी किताबों को क्यों नहीं पढ़ते हो, ऐसा भी कभी नहीं बोलेंगे। लिखा भी रहेगा तो भी, अगर आप इतना बोल रहे मैं प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहे हो तो प्रभुपाद जी के ग्रंथों को रिपीटेड, नहीं समझ में आ रहा दसम स्कंद केवल पढ़ो। और अगर आप इंटेलिजेंट है, फिलोसॉफिकल माइंड है, फिलोसॉफी में बहुत रुचि है, तो सप्तम स्कंद को बार बार पढ़ो। प्रहलाद महाराज पायोनियर फिलोसॉफर, इसके बड़ा फिलोसॉफर आज तक जगत में कोई हुआ नहीं है, फर्स्ट क्लास फिलोसॉफी प्रहलाद महाराज की। वो बड़ी लग रही है तो छोटी प्रभुपाद जी ने किताब लिखी है प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश, है ना, ट्रांसेंडेंटल मैसेज प्रहलाद महाराज, उस ग्रंथ को बार बार पढ़ो। दैट वन बुक इज इनफ टू टेक यू बैक होम, बैक टू गॉडहेड। एक ही ग्रंथ शिला प्रभुपाद जी का आपको भगवत धाम ले जाने के लिए सक्षम है। और कोई इरादा है तो अलग बात है, अन्यथा दिस इज इनफ। और कोई इरादा है तो अलग बात है, क्योंकि अलग और इरादे शायद आपके इन ग्रंथों से संतुष्ट न भी हो। हालांकि इसमें तो पोटेंसी वो भी है, इट्स कल्पवृक्ष, कल्पवृक्ष कुछ भी कर सकता है, लेकिन हो सकता है कल्पवृक्ष इंटेलिजेंट होते हैं ना, जो आपके लिए आप सोच रहे हैं वो सही ना हो तो कल्पवृक्ष आपको वो ना भी दे, तो वो शायद ना हो, लेकिन आध्यात्मिक इच्छाएं कल्पवृक्ष 100% निश्चय ही पूर्ति करता है। भौतिक इच्छाओं को शायद, क्योंकि वो इंटेलिजेंट वृक्ष होते हैं, वो शायद न भी करे, देखें कि इसके लिए पॉइजन है, ये मांग रहा है लेकिन ये पॉइजन है, तो न भी दे शायद। फिर शंका आती है, अरे कल्पवृक्ष बोलते हो मैं कितना हरिनाम कर रहा हूं, मेरी इच्छा धन की पूर्ति नहीं हो रही है, मेरी इच्छा स्त्री की पूर्ति नहीं हो रही है। अरे क्या करे कल्पवृक्ष, वो तो जान रहा है ना, वो इंटेलिजेंट है, तुम मूर्ख हो, इसीलिए कल्पवृक्ष नहीं दे रहा है। ये नहीं कि उसकी शक्ति नहीं है, जैसे हर पिता की शक्ति है कि अपने बच्चों को एक दो नहीं हजार कैडबरी खिला सकता है, लेकिन एक दो भी बड़ी मुश्किल से डांट के देता है, क्योंकि वो समझ रहा है कि इसके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं दे रहे। तो पिता सक्षम में नहीं है ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सो हैव फेथ इन शिला प्रभुपाद। कल का जो विषय ना फेथ, फाइनल आई विल कंक्लूड अ लेक्चर बाय सेइंग फेथ इक्वल्स शिला प्रभुपाद पर्पज, फेथ इक्वल्स सर्विस टू वैष्णवाद, फेथ इक्वल्स सेव योर सेल्फ फ्रॉम क्रिटिसाइजिंग डिवोटीज। दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ फेथ। श्रद्धा विश्वास गुरु साधु शास्त्र की व्याख्या क्या, मैं ये लेक्चर समाप्त करने के लिए कह रहा हूं। श्रद्धा यानी प्रभुपाद जी के तात्पर्य, चाहिए तो लो। श्रद्धा यानी वैष्णवों की सेवा, और श्रद्धा को नष्ट नहीं करना है तो भक्तों की निंदा छोड़ दो। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की हिताय गौर प्रेम आनंदे। एनी क्वेश्चन कमेंट, कोई प्रश्न टीका टिप्पण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की हिताय गौर प्रेम आनंदे।